Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से स्ट्रेस हमारी जिंदगी पर हावी होता जा रहा है। हम ये आज तक मानते आए कि स्ट्रेस जो है वो सर्कमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियों की वजह से हमारे ज़िंदगी में आता है, लेकिन इस बात की सच्चाई को हमने ये जाना कि हम स्ट्रेस खुद क्रिएट करते हैं और उसके जिम्मेवार भी हम खुद ही हैं। अब स्ट्रेस के बारे में आगे जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि स्ट्रेस किस तरह से हमें हानिकारक है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे तो हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी चल रही है, आप देखते ही हैं, पूरे दिन 24 घंटे कम पड़ते हैं हमें काम के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को मनाते हुए, सब कुछ करते हुए, तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है? मुझे तो लगता है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास।
सही है, कई लोग कहते हैं ना भी मरने का भी टाइम नहीं है।
बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल, किसी को भी पूछे, अगर मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई अपने फ्रेंड से पूछो, चलो मिलते हैं, नहीं मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, प्रायोरिटी लिस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि उसे एंड करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं।
ऐसे में कई बार लोग कहते हैं कि चलो स्ट्रेस से कुछ बीमारी होगी, एसिडिटी हो जाएगी, सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज होगा, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना, ट्रीटमेंट ले लेंगे, अभी से क्यों चिंता करें, अदरवाइज तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है, सक्सेस में कमी आ जाती है। परंतु मुख्य रूप से दो बातें समझने की आवश्यकता है।
हाँ जी।
कि और कोई शारीरिक बीमारी हो तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, परंतु अगर ब्रेन डैमेज हो गया, कहते ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हुए, तो वो फिर से रीजनरेट नहीं हो सकते।
अच्छा, मतलब स्ट्रेस का हमारे ब्रेन पर भी असर पड़ सकता है।
और परफेक्ट, देखो मैं कैसे होता है
जी।
दो चीजें होती है स्ट्रेस में, एक तो जब आप कहीं एक्साइट होते, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, तो दिमाग की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं, वो फूट सकती है, भले हमें पता नहीं चलता है, आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगी, परंतु आज देखो तो भी मास में एक बार दो बार ऐसा होता रहता है ना, तो दो चार साल में सचमुच इतना डैमेज होगा कि जो विजिबल भी हो जाए, यू नो, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और कैसे डैमेज होता है कि कुछ हमारी इमोशंस है कि जिसमें खून ठीक से बह नहीं पाता है।
अच्छा।
या तो न्यूरॉन्स के ऊपर जो एक चर्बी की लेयर होती है, माइलाइन सीट कहते हैं, उसका फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाता है कि जब आप तनाव में होते हैं।
अच्छा।
तो इसके कारण सचमुच लॉन्ग टर्म में ब्रेन डैमेज भी हो सकता है।
ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
सुनो, दिस कैन बी अ वन सिंगल फैक्टर।
ओके।
कि भी अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, बचाने के लिए भी आप प्रायोरिटी दो, तनाव को कम करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सारा दिन में जब हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी भी हम सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बॉडी पर इफेक्ट होती है।
करेक्ट।
और जो हमारे रंग सूत्र है, डीएनए थोड़े से डैमेज होते हैं।
अच्छा।
लेकिन फिर जब हम सो जाएंगे या रिलैक्स होंगे, तो फिर से डीएनए अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे और फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। परंतु जब स्ट्रेस आती है तो डीएनए को, अपने आप को जो रिपेयर करने की क्षमता है, वही गड़बड़ा जाती है, एंड दैट कैन बी अ बिग डैमेज। नो, दिस कैन गो इन जनरेशंस, इन फैक्ट।
ओके।
और मोर इम्पोर्टेंट इज नाउ, क्योंकि अभी आप देखो तो 90% जो बीमारियां है वो लाइफस्टाइल डिजीज है।
करेक्ट।
ना, तो अगर उसमें डीएनए आपका डैमेज हो गया तो फिर तो वो आगे चलती रहेगी। तो ना, looking at these two factors, हाँ, बस most important ये बात है कि जैसे और चीजों के लिए आप टाइम निकालते हैं, हाँ, कितना भी बिजी है, प्राइम मिनिस्टर भी खाना खाने के लिए टाइम निकालते होंगे, ये तो नहीं कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ खाऊंगा नहीं,
जी नहीं,
है ना, इससे आप कितने भी बिजी हो, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ करिए।
ओके
ना, सिंपल से उपाय हो सकते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने आप ही थोड़ी अगर हमारे में अंडरस्टैंडिंग हो तो हम स्ट्रेस को प्रिवेंट कर पाएंगे।
बिल्कुल ठीक है, आपने अभी तक हमने सारे फंडामेंटल्स जान लिया, हमने ये भी जान लिया स्ट्रेस है क्या, अब करना क्या है, क्योंकि एक्शन टाइम इज द मेन टाइम। जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से उससे कोप अप करें, ऐसा कौन सी छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप हमें देना चाहेंगे?
पहला तो कहते हैं कि डॉक्टर अली को कंसल्ट करो।
ओके,
अली का स्पेलिंग क्या है?
ALI।
हाँ, अली इज ALI। ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस,
ओके,
सजगता
जी।
एल इज लिसन, अर्थात कि सुनो, और आई का अर्थ है इंट्रोस्पेक्ट, कि अंतर होकर के जो उसका मूल कारण है उसको जांचो।
करेक्ट जी।
सबसे पहली बात है अवेयरनेस। आज दिक्कत ही यहां पर होती है कि जब तनाव बहुत बढ़ जाए फिर हमें लगता है कि माय गॉड मेरी हार्ट बीट बढ़ गई।
करेक्ट।
या मुझे सरदर्द हो गया।
करेक्ट।
लेकिन सरदर्द से पहले भी कुछ होता है कि हमें अनकंफर्टेबल लगता है, प्रेशर आता है, कुछ ना कुछ होता है
जी।
तो उसके बारे में अगर व्यक्ति सजग हो जाए,
सही बात है,
तो वहीं उसे वो रोक सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे सिंपल उदाहरण है कि गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तब उसे हम रोक सकते हैं, जब वो हरिद्वार तक पहुंच जाती है फिर उसे नहीं रोक सकते।
ओके।
तो ऐसे ही तनाव का भी जो उद्गम स्थान है, जब वो शुरू होता है तब ही अगर हम सजग हो जाए, तभी हम समझ ले और फिर कुछ उपाय करें तो उसको रोकना सहज है।
okay.
और इसके लिए कुछ स्पेशल अभ्यास करना पड़ेगा
जी।
तब आपकी वह सजगता बढ़ेगी।
किस अभ्यास की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑलमोस्ट हमारी सारी ऑडियंस जानना चाहेंगे कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम स्ट्रेस से कोप अप कर सके।
पहला तो हमें अभ्यास ये करना पड़ेगा सजगता को बढ़ाने का। नो, इट्स अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम अवेयर नहीं होते हैं
जी।
आज कई लोग हैं अनजाने में दांतों को पीस रहे लेकिन उनको मालूम नहीं होता है।
करेक्ट।
जब दर्द हो जाता है तब पता चलता है।
करेक्ट।
है ना? तो ऐसे ही कई लोग शोल्डर्स को भी टेंशन में रखते लेकिन उनको पता नहीं। कई पेट को, बैक को भी टेंशन में रखते हैं
जी।
तो एक तो सिंपल अवेयरनेस तो ये होनी चाहिए कि भी जब भी आप खड़े होते हो, बैठते हो, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या फीलिंग हो रही है। अगर कहीं एक्सेस प्रेशर है, कहीं तनाव है, तो उसे ठीक कर लो ना, बार बार ये करना चाहिए। जब खड़े भी है तब अधिकतर हम एक पैर पर बहुत जोर देते, एक पर कहीं बार बिल्कुल नहीं देते। तो वो भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बैलेंस करें।
ओके।
और मूल बात तो यही है कि भी अंदर में क्या चल रहा है उसके बारे में सजग हो। जैसे उदाहरण के रूप में कि उल्टी होने से पहले भी कुछ कुछ होता है ना, उल्टी होने से पहले भी नौशिया होता है,
नौशिया।
तो वो जो फीलिंग आती है, तो ऐसे ही कोई भी विचार जब तनाव का रूप लेता है उससे पहले भी कुछ फीलिंग्स आती है।
अच्छा।
अगर हम एक सजगता का अभ्यास करें और वो फीलिंग को जान ले तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उससे
उसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं। क्योंकि जैसे मैं बात कर रही, अभी आप कह रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम के आने से पहले भी, मतलब अगर मेरे को स्ट्रेस आने वाला है उसके पहले भी कुछ कुछ अगर सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स के बारे में अगर आप हमें बता दें तो शायद हमारे लिए एक नई बात हो जाएगी।
ये सचमुच जानना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है
जी।
कि अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ करके हर व्यक्ति देखे
जी,
कि पिछले 5 साल में, 10 साल में जब जब भी मेरे सामने विपरीत परिस्थितियां आई तो क्या हुआ।
करेक्ट।
उसको मोटा मोटा अलग रूप में डिवाइड कर सकते।
करेक्ट।
एक तो जैसे कि भी जब मेरे पर वर्क प्रेशर आया तो क्या हुआ, जब मैं डर गया तो क्या हुआ, है ना, जब मुझे गुस्सा आया तो क्या हुआ
जी?
कभी किसके बारे में मुझे ईर्ष्या हुई तो क्या हुआ
जी?
ऐसे मोटा मोटा भी हर व्यक्ति अगर उसे 4-5 ग्रुप में डिवाइड करे कि इस प्रकार की परिस्थिति आती है तब मुझे क्या होता है, और वो भिन्न व्यक्ति को भिन्न हो सकता है।
करेक्ट।
जैसे भी किसी को वर्क प्रेशर आएगा तो चेस्ट में पेन हो सकता है, कोई व्यक्ति को वर्क प्रेशर आएगा तो सर दर्द हो सकता है।
करेक्ट।
तो हमें अपना जानना चाहिए।
ओके, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट,
थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसको पेट में तकलीफ हो सकती है, किसको थोड़ा भी होगा तो उसको लूज मोशन होने लगेंगे। तो ऐसे अगर हम जो बॉडीली फीलिंग्स है उसको भी अगर समझ ले कि भाई मैं नर्वस हो रहा हूं, कई लोगों को थोड़ा भी स्ट्रेस आएगा ना तो मुंह सूखने लगता है।
करेक्ट
ना, तो ऐसे
ये सिम्टम्स हो सकते हैं।
ये मतलब शुरू प्राइमरी सिम्टम्स है, कुछ एक्चुअल नहीं है, शुरुआत का है। लेकिन ये हम समझ ले कि भी ये सिचुएशन में ऐसा होता है।
ओके।
उदाहरण के रूप में भी मैंने भी अपना अनुभव किया कि भी कभी कोई हमारे से बड़े नाराज है, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं लेकिन लगता है कि भी बॉस नाराज है। पढ़ते थे तब भी होता था
जी।
तो तुरंत मैंने देखा कि जैसे चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन होता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि थोड़ा भी चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन फील हो, इमीडिएटली आई शुड रियलाइज दैट लेट मी रिलैक्स। इफ आई कैन रिलैक्स दोज मसल्स नो, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं।
करेक्ट।
तो ऐसे एक तो ये अवेयरनेस को डेवलप करना है। अवेयरनेस को डेवलप बहुत ही, वास्तव में तो ये एक दिन का काम नहीं है।
करेक्ट।
हमें कहेंगे कि भी 2-4 मास इस पर अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास? बड़ा सिंपल सा ही, कोई आपका काम रुकने वाला नहीं है
जी।
कि चल रहे है तो है ना, पूरा एक अवेयरनेस लाओ कि भी चल रहे, पैर ऊपर आया, ये पैर ऊपर गया, फिर मैंने नीचे रखा तो क्या हुआ, ये पैर ऊपर आया क्या फीलिंग हुई, नीचे रखा क्या हुआ। सचमुच हमें करके देख, नहीं नहीं आप अगर करके देखो ना तो बहुत सारे फायदे, मेरे सेमिनार्स में भी मैंने कई बार करवाया है।
अच्छा।
तो लोग तुरंत बोलते हुआ ना, तो भी हम अभी प्रेजेंट में आ गए, पहले हम प्रेजेंट में नहीं थे,
क्योंकि आधी जिंदगी हमारी तो या तो पास्ट में बीतती है या तो आने वाले फ्यूचर में बीतती है। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो आधे से आधे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन यहीं पे
मिल जाएंगे, और इसमें तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है।
ओके।
जिसको कहते हैं हियर एंड नाउ।
करेक्ट।
अभी मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं। मेरे सेमिनार्स में भी मैं बहुतों को कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस जरूर करो, है ना, सभी दर्शकों को कहेंगे कि थोड़ा समय जरूर जरूर ये अभ्यास करो
जी,
है ना, दिन में ऑलमोस्ट कहेंगे 1008 बार अपने आप को यह प्रश्न पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग क्या हो रही है। बार बार
इंटरेस्टिंग,
व्हाट आई एम डूइंग, मुझे फीलिंग क्या हो रही है। जैसे अभी कि मैं बोल रहा हूं तो अगर मैं अवेयरनेस है, मुझे फीलिंग क्या हो रही है, तो यहां से उठी अभी मैं चल रहा हूं तो फीलिंग क्या हो रही है ना, सोने लगे तब मैं सो रहा हूं, मुझे फीलिंग क्या हो रही है। जैसे हर बात में अगर वह सजगता को लाए, और आगे चल के तो ये भी कर सकते हैं कि सजगता को लाए, फिर इसको मैं इंजॉय कर रहा हूं कि मैं चल रहा हूं, वॉकिंग को मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, खाने को इंजॉय कर रहा हूं। आज हम अवेयर होते ही नहीं, खाना ऐसे खाते हैं जैसे शरीर में पेट्रोल डाल रहे हैं।
करेक्ट।
तो अगर वो सारा दिन में अवेयरनेस आए तो कई फायदे, एक तो इसका बहुत बड़ा तो फायदा है कि तनाव जब शुरू होगा तब पता चलेगा, और दूसरा आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी।
ओके।
कईयों ने कहा है, मेरे एक सेमिनार में मैंने टेक्निक बताई थी, तो 2-3 दिन के बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल मिले, उन्होंने कहा डॉक्टर वो टेक्निक से बहुत फायदा हुआ। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी चाबी गुम हो गई। तो फिर तो मैं सोचा चाबी कहाँ, चाबी, फिर मैंने सोचा कि चाबी को लास्ट कहाँ इंजॉय किया था, किचन में इंजॉय किया था, तो चाबी किचन में ही थी।
क्या बात है, वेरी नाइस,
है ना। एक भाई है, वो अपना मोबाइल उनका मिस हो गया, जैसे हम सबको होता है,
होता रहता
है ना। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं अगर मोबाइल मिस हो जाए, तो मोबाइल तो कहीं घर में रहे, हम अपना ही फोन करते ताकि कहाँ बेल बज रहा है।
Correct.
है ना, परंतु उन्होंने टेक्निक की थी, तो ये सोचा कि लास्ट में मैंने मोबाइल को कहाँ इंजॉय किया था, वॉशरूम में इंजॉय किया था। वहां गए तो वॉशरूम में ही मोबाइल था। सो ना, इफ वी कैन डेवलप दिस प्रैक्टिस तो नो इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि जो बैकग्राउंड में चलता है ना वो भी बहुत नुकसानकारक है। जैसे अभी भी है ना, कोई आवाज आ रहा है आसपास में स्टूडियो में, परंतु देखो हम साइलेंट हो जाए, फिर आप देखना चुंग हो रहा है,
समथिंग इज हैपनिंग
लाइक दैट. नो, ऑलवेज देयर समथिंग गोज ऑन इन अवर बैकग्राउंड ऑल्सो. हमको लगता है कि भी अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कुछ चल सकता है
जी,
है ना. जब हम खा रहे हैं तो हमारे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में भी सजग होना चाहिए. उसके विषय में सजग हो जाएंगे तो जो हमारे अनकॉन्शियस में चल रहा है उसको भी पहचान पाएंगे. भले गहरी गहरी टेक्निक है, परंतु मैं समझता हूँ पहला अभ्यास है अवेयरनेस, बस वो करते रहो करते रहो. दूसरा है एल, एल अर्थात लिसन. वास्तव में सुनना क्या है कि तनाव भी कुछ संदेश दे रहा है. अच्छा. जैसे हमने पहले भी उसकी परिभाषा के विषय में चर्चा की, तनाव की एक बहुत अच्छी परिभाषा है
जी.
जो परिभाषा के अनुसार तनाव कोई ना कोई संदेश है.
अच्छा.
जो यह कहने के लिए आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है.
ओके.
तो इसलिए जब भी तनाव आता है तब सुनो. जैसे एकदम सिंपल सा उदाहरण देना है तो जब ठंडी की मौसम आती है तब वह एक संदेश लाती है. क्या संदेश है?
कि आप गर्म कपड़े पहने. हाँ.
और अगर उसको हम नहीं सुनते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे.
करेक्ट.
तो वैसे जब भी स्ट्रेस आता है, वर्क प्रेशर आता है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप इमोशनल हो रहे हैं, वह सब में कोई ना कोई मैसेज है. वो अगर मैसेज को हम सुने कि भी वो क्या कह रहा है, क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, कैसे मैं परिवर्तन करूंगा तो इसके साथ डील कर सकता हूं, तो भी तनाव काफी कम हो जाएगा. और यह वो सजगता के साथ साथ ही जाता है कि भी सजग भी हो जाओ और फिर अंदर में जो चल रहा है उसको सुनो
जी.
जो मैसेज आ रहा है उसको सुनो.
ओके.
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भी कोई चीज है, इट इज अनएक्सेप्टेबल, तो सुनो कि भी जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट.
करेक्ट.
नहीं, कोई में आपको अंदर में प्रेशर आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो सुनो कि भी सचमुच ये बात होती है तो मुझे इरिटेशन आता है. और जितना जल्दी आप उसको सुनेंगे उसके मैसेज को और अगर परिवर्तन करेंगे तो तनाव जड़ से ही चला जाएगा. नहीं तो आगे चल के वो बहुत बड़ी बीमारियों का रूप ले सकता है, है ना. बहुत सारे ऐसे किस्से हैं
जी.
अभी ही मेरा एक किस्सा है
जी,
है ना, कि भी ऑस्ट्रेलिया में लड़का कि जिसको एक बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोस, ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाँ, कि जिसमें वो रुक जाता है, कुछ भी कर रहा है बीच में रुक जाएगा, करेगा नहीं, नहीं करना है, बिगड़ जाए तो अच्छा है, है ना. जैसे अंदर में उसको कोई बोल रहा है.
अच्छा.
इतना इजी नहीं होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जब उसका पूरा मैंने समझा तो दो तीन सेशन में ये पता चल गया कि इसका कॉज था कि वो भारत से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे थे.
ओके.
और फादर तो वहां सेट हो गए थे, लेकिन अभी ये बच्चा है, वो बॉम्बे में ही बड़ा हुआ तो चाहता था कि बे मैं बॉम्बे में रहूं, उसको नहीं जाना था.
ओके.
जब नहीं परमानेंट वीजा के लिए उसे फोर्स किया तो भी उसने बहुत रिजिस्ट किया, नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, मेरे दोस्त मिस हो जाएंगे. खूब मन में चला कि अरे मेरे दोस्त मिस हो जाएंगे, वहां क्या होगा, कैसे होगा, ना बोलूं. कुछ कुछ तो उसने अपने पापा को बताया भी.
अच्छा.
लेकिन फिर अनकॉन्शियस ने ऐसा रिएक्शन दिया कि देख लेना आप लोग फोर्स करते हैं तो मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा सब बिगाड़ने वाला है.
ओके.
मेरे से भी ज्यादा तुम्हारा बिगड़ने वाला है.
हुँ.
ना, इससे वो एक अनकॉन्शियसली चलता है, पता नहीं चलता है, तो वह कंटिन्यूस उसको रोक रहा है और ओसीडी होगी.
ओके.
तो ऐसे अगर हम सुने कि भी क्या मैसेज आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है
जी.
कि भी बच्चे को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, उसको इंडिया में रहना है, तो तब फोर्स करने के बदले उसे बैठ करके समझाया जाए, है ना. भले उसमें टाइम लगता है. आज ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं
जी.
क्योंकि हम सब शॉर्टकट चाहते हैं
जी.
अगर दो दिन भले लग जाए लेकिन वो बच्चे को बिठा के कहे कि चलो हम लिखते हैं कि इंडिया में तुमको ये एडवांटेज है ना, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ये एडवांटेज होंगे, ये डिसएडवांटेज होंगे, है ना, तो इंडिया में ये डिसएडवांटेज है, तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाओगे, अगर पूरा वो लिस्ट रखे और उसके सामने रखा जाए
तो शायद वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली उसको एक्सेप्ट कर पाए।
हाँ, तो वो उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला वो नहीं चलेगा,
वो नहीं चलेगा।
नो, दिस इज अ होल कॉन्फ्लिक्ट, और फिर वो जो रिएक्शन होता है वह बहुत बुरा भी हो सकता है।
करेक्ट,
है ना, कहीं बार सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है।
करेक्ट,
तो इसलिए सुनो बस, एक आदत पड़ने चाहिए, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अंदर में क्या चल रहा है।
करेक्ट,
और फिर तीसरा है आई,
आई
आई इज इंट्रोस्पेक्ट।
ओके,
इंट्रोस्पेक्ट का अर्थ है कि अंतर्मुखी होकर के देखो कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में आप इंट्रोस्पेक्ट होंगे तो पता चलेगा कि शायद मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इसलिए मैं नर्वस हो रहा हूं, या अंदर में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो चले कब पता चलेगा कि शायद मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई मेरा ईगो ज्यादा है कहीं, वास्तव में कोई बात नहीं है परंतु मेरा अहंकार बीच में आ रहा है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है।
True.
तो ऐसे सचमुच इंट्रोस्पेक्ट करो ना, आपको पता चलेगा कि बिकॉज कहाँ है।
Correct.
और बहुत कुछ हम खुद कर सकते हैं
जी,
भल साइकोलॉजी एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत सारी जार्गन्स है साइकोलॉजी में, लेकिन सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें साइकोलॉजी को तो जीवन के बारे में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं।
हाँ जी।
तो ऐसे सबसे अच्छा है कि पहले डॉक्टर अली को संपर्क करो, फिर आगे के भी स्टेप ले सकते हैं।
बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने इतनी सारी बातें सीखी हमने, जिसमें सबसे खूबसूरत बात ये जो आपने कही अभी कि डॉक्टर अली को कंसल्ट करें तो ऑटोमेटिकली हमारे सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब,
थैंक यू
फॉर कमिंग इन द शो।
थैंक्स,
ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं स्ट्रेस के साथ कोप अप करने की, उसके अंदर सबसे अच्छा टेक्निक आज हमने जाना जो है अली टेक्निक, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग एंड आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये जब आप इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को जब अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि स्ट्रेस के साथ कोप अप करना इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम उसे बना कर रखे हैं। और सबसे मेन बात, आप खुद अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स अपना काम करते रहेंगे लेकिन अगर आप अपने साथ में इन तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप स्ट्रेस से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।